यर्मिया बाब 7। रब यर्मिया से हम कलाम हुआ, रब के घर के सहन के दरवाजे पर खड़ा होकर ऐलान कर कि ऐ यहूदा के तमाम बाशिंदों, रब का कलाम सुनो। जितने भी रब की परस्तिश करने के लिए इन दरवाजों में दाखिल होते हैं वो सब तवज्जह दें। रबुल अफवाज जो इसराइल का खुदा है फरमाता है कि अपनी जिंदगी और चाल चलन दुरुस्त करो तो मैं आइंदा भी तुम्हें इस मकाम पर बसने दूंगा। उनके फरेबदे अल्फाज पर एतमाद मत करो जो कहते हैं यहाँ हम महफूज हैं क्योंकि ये रब का घर, रब का घर, रब का घर है। सुनो, शर्त तो ये है कि तुम अपनी जिंदगी और चाल चलन दुरुस्त करो और एक दूसरे के साथ इंसाफ का सलूक करो कि तुम परदेसी, यतीम और बेवा पर जुल्म ना करो, इस जगह बेकसूर का खून ना बहाओ और अजनबी माबूदों के पीछे लगकर अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ। अगर तुम ऐसा करो तो मैं आइंदा भी तुम्हें इस जगह बसने दूंगा, उस मुल्क में जो मैंने तुम्हारे बाप दादा को हमेशा के लिए बख्श दिया है। लेकिन अफसोस, तुम फरेबदेह अल्फाज पर भरोसा रखते हो जो फजूल ही है। तुम चोर, कातिल और जनाकार हो, नेज तुम झूठी कसम खाते, बाल देवता के हुजूर नजूर जलाते और अजनबी माबूदों के पीछे लग जाते हो, ऐसे देवताओं के पीछे जिनसे तुम पहले वाकिफ नहीं थे, लेकिन साथ साथ तुम यहाँ मेरे हुजूर भी आते हो। जिस मकान पर मेरे ही नाम का ठप्पा लगा है उसी में तुम खड़े होकर कहते हो हम महफूज हैं। तुम रब के घर में इबादत करने के साथ साथ किस तरह ये तमाम घिनौनी हरकतें जारी रख सकते हो? रब फरमाता है, क्या तुम्हारे नजदीक ये मकान जिस पर मेरे ही नाम का ठप्पा लगा है डाकुओं का अड्डा बन गया है? खबरदार, ये सब कुछ मुझे भी नजर आता है। सैला शहर का चक्कर लगाओ जहां मैंने पहले अपना नाम बसाया था। मालूम करो कि मैंने अपनी कौम इसराइल की बेदीनी के सबब से उस शहर के साथ क्या किया। रब फरमाता है, तुम ये शरीर हरकतें करते रहे और मैं बार बार तुमसे हम कलाम होता रहा, लेकिन तुमने मेरी न सुनी। मैं तुम्हें बुलाता रहा लेकिन तुम जवाब देने के लिए तैयार न हुए। इसलिए अब मैं इस घर के साथ वो कुछ करूंगा जो मैंने सैला के साथ किया था, गो इस पर मेरे ही नाम का ठप्पा लगा है। ये वो मकान है जिस पर तुम एतमाद रखते हो और जिसे मैंने तुम्हें और तुम्हारे बाप दादा को अता किया है। मैं तुम्हें अपने हुजूर से निकाल दूंगा बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने तुम्हारे तमाम भाइयों यानी इसराइल की औलाद को निकाल दिया था। ऐ यर्मिया, इस कौम के लिए दुआ मत कर, इसके लिए न इल्तिजा कर न मन्नत, इन लोगों की खातिर मुझे तंग न कर क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तुझे वो कुछ नजर नहीं आ रहा जो ये यहूदा के शहरों और यरूशलेम की गलियों में कर रहे थे? और सब इसमें मुलविस हैं। बच्चे लकड़ी चुनकर ढेर लगाते हैं, फिर बाप उसे आग लगाते हैं, जबकि औरतें आटा गूंद गूंद कर आग पर आसमान की मलका नामी देवी के लिए टिक्कियां पकाती हैं। मुझे तंग करने के लिए वह अजनबी माबूदों को मैं की नजरें भी पेश करते हैं, लेकिन हकीकत में ये मुझे उतना तंग नहीं कर रहे जितना अपने आप को। ऐसी हरकतों से वह अपनी ही रुसवाई कर रहे हैं। रब कादिर मुतलक फरमाता है, मेरा कहर और गजब इस मकाम पर, इंसान व हैवान पर, खुले मैदान के दरख्तों पर और जमीन की पैदावार पर नाजिल होगा। सब कुछ नजर आतिश हो जाएगा और कोई उसे बुझा नहीं सकेगा। रब्बुल अफवाज जो इसराइल का खुदा है फरमाता है, भस्म होने वाले कुर्बानियों को मुझे पेश न करो बल्कि उनका गोश्त दीगर कुर्बानियों समेत खुद खा लो, क्योंकि जिस दिन मैं तुम्हारे बाप दादा को मिस्र से निकाल लाया उस दिन मैंने उन्हें भस्म होने वाली कुर्बानियां और दीगर कुर्बानियां चढ़ाने का हुक्म न दिया। मैंने उन्हें सिर्फ ये हुक्म दिया کہ میری سنو، تب ہی میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میری قوم ہوگے۔ پورے طور پر اس راہ پر چلتے رہو جو میں تمہیں دکھاتا ہوں، تبھی تمہاری خیر ہوگی۔ لیکن انہوں نے میری نہ سنی، نہ دھیان دیا، بلکہ اپنے شریر دل کی ضد کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ انہوں نے میری طرف رجوع نہ کیا، بلکہ اپنا منہ مجھ سے پھیر لیا۔ جب سے تمہارے باپ دادا مصر سے نکل آئے، آج تک میں روز بروز اور بار بار اپنے خادموں یعنی نبیوں کو تمہارے پاس بھیجتا رہا، تو بھی انہوں نے نہ میری سنی نہ توجہ دی۔ وہ بزد رہے، بلکہ اپنے باپ دادا کی نسبت زیادہ برے تھے۔ اے یرمیاہ، تو انہیں یہ تمام باتیں بتائے گا، لیکن وہ تیری نہیں سنیں گے۔ تو انہیں بلائے گا، لیکن وہ جواب نہیں دیں گے۔ تب تو انہیں بتائے گا، اس قوم نے نہ رب اپنے خدا کی آواز سنی نہ اس کی تربیت قبول کی۔ دیانتداری ختم ہو کر ان کے منہ سے مٹ گئی ہے۔ اپنے بالوں کو کاٹ کر پھینک دے، جا بنجر ٹیلوں پر ماتم کا گیت گا، کیونکہ یہ نسل رب کے غضب کا نشانہ بن گئی ہے اور اس نے اسے رد کر کے چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ رب فرماتا ہے، جو کچھ یہودا کے باشندوں نے کیا وہ مجھے بہت برا لگتا ہے۔ انہوں نے اپنے گھونسلے بتوں کو میرے نام کے لیے مخصوص گھر میں رکھ کر اس کی بے حرمتی کی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے وادی بن ہنوم میں واقع توفت کی اونچی جگہیں تعمیر کی تاکہ اپنے بیٹے بیٹیوں کو جلا کر قربان کریں۔ میں نے کبھی بھی ایسی رسم ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس کا خیال میرے ذہن میں آیا تک نہیں۔ چنانچہ رب کا کلام سنو، وہ دن آنے والے ہیں جب یہ مقام توفت یا وادی بن ہنوم نہیں کہلائے گا، بلکہ قتل و غارت کی وادی۔ اس وقت لوگ توفت میں اتنی لاشیں دفنائیں گے کہ آخر کار خالی جگہ نہیں رہے گی۔ تب اس قوم کی لاشیں پرندوں اور جنگلی جانوروں کی خوراک بن جائیں گے، اور کوئی نہیں ہوگا جو انہیں بھگا دے۔ میں یہودا کے شہروں اور یروشلم کی گلیوں میں خوشی و شادمانی کی آوازیں ختم کر دوں گا۔ دولہا دلہن کی آوازیں بند ہو جائیں گی، کیونکہ ملک ویران و سنسان ہو جائے گا۔